ये हफ्तावार बाइबल का दरसी वाज प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट की जानब से है, जो न्यू जर्सी अमेरिका में वाक़ है। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारी वेबसाइट मुलाहिजा करें www.plainfieldcs.com। ये सबक 29 जून 2025 बरोज इतवार हफ्ता के इख्तिताम पर आपके मतालिया की गर्ज से तैयार किया गया है। मजमून क्रिश्चियन साइंस, सुनहरी मतन मुकाशफा। जा उस फरिश्ता के हाथ में से जो समंदर और खुशकी पर खड़ा है, वो खुली हुई किताब ले ले। जवाबी मतालिया मुकाशफा। फिर मैंने एक और जोरावर फरिश्ता को बाधा ओढ़े हुए आसमान से उतरते देखा। उसके सर पर धनक थी और उसका चेहरा आफताब की मानद था और उसके पांव आग के स्तूनों की मानद, और उसके हाथ में एक छोटी सी खुली हुई किताब थी। उसने अपना दाहिना पांव तो समंदर में रखा और बायां खुशकी पर, और ऐसी बड़ी आवाज से चिल्लाया जैसे बब्बर धारता है। और जब गरज की सात आवाजें सुनाई दे चुकी तो मैंने लिखने का इरादा किया और आसमान पार से ये आवाज आते सुनी कि जो बातें गरज की इन सात आवाजों से सुनी हैं, उनको पोशीदा रख और तहरीर ना कर। तब मैंने उस फरिश्ता के पास जाकर कहा कि ये छोटी किताब मुझे दे दे। उसने मुझसे कहा, इसे खा ले, ये तेरा पेट तो कड़वा कर देगी मगर तेरे मुंह में शहद की तरह मीठी लगेगी। बस मैं छोटी किताब फरिश्ता के हाथ से लेकर खा गया। वो मेरे मुंह में तो शहद की तरह मीठी लगी मगर जब मैं उसे खा गया तो मेरा पेट कड़वा हो गया। और मुझसे कहा गया कि तुझे बहुत सी उम्मतों और कौमों और अहले जुबान और बादशाहों पर फिर नबूवत करना ज़रूर है। दरसीवाज बाइबल में से खरूज। मैं खुदावंद तेरा शाफी हूँ। ज़बूर। ऐ मेरी जान, खुदावंद को मुबारक कह और जो कुछ मुझ में है उसके कदूस नाम को मुबारक कहे। ऐ मेरी जान, खुदावंद को मुबारक कह और उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर। वो तेरी सारी बदकारी बख्शता है, वो तुझे तमाम बीमारियों से शिफा देता है, वो तेरी जान हलाकत से बचाता है, वो तेरे सर पर शफ़क़त और रहमत का ताज रखता है, वो तुझे उम्र भर अच्छी अच्छी चीज़ों से आसूदा करता है, तो उकाब की मानद अज़सर नौ जवान होता है। मरकस। और उन दिनों ऐसा हुआ कि यसू ने गलील के नासरत से आकर यरदन में यूहन्ना से बपतिस्मा लिया, और जब वो पानी से निकलकर ऊपर आया तो फिलफौर उसने आसमान को फटते और रूह को कबूतर की मानद अपने ऊपर उतरते देखा, और आसमान से आवाज आई कि तू मेरा प्यारा बेटा है, तुझसे मैं खुश हूँ। और वो फिलफौर इबादत खाना से निकलकर याकूब और यूहन्ना के साथ शमौन और इंद्रियास के घर आए। शमौन की सास तप में पड़ी थी और उन्होंने फिलफौर उसकी खबर उसे दी। उसने पास जाकर और उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया और तप उस पर से उतर गई और वो उनकी खिदमत करने लगी। शाम को जब सूरज डूब गया तो लोग सब बीमारों को और उनको जिनमें बदरूहें थीं उसके पास लाए, और सारा शहर दरवाजे पर जमा हो गया, और उसने बहुतों को जो तरह तरह की बीमारियों में गिरफ्तार थे अच्छा किया, और बहुत सी बदरूहों को निकाला और बदरूहों को बोलने न दिया क्योंकि वो उसको पहचानती थीं। और एक कुड़ी ने उसके पास आकर उसकी मिन्नत की और उसके सामने घुटने टेक कर उससे कहा, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छूकर उससे कहा, मैं चाहता हूँ कि तू पाक साफ हो जा। और फिलफौर उसका कोट जाता रहा और वो पाक साफ हो गया। यूहन्ना। ईद फिसा से पहले जब यसू ने जान लिया कि मेरा वो वक्त आ पहुंचा कि दुनिया से रुखसत होकर बाप के पास जाऊं, तो अपने उन लोगों से जो दुनिया में थे जैसी मोहब्बत रखता था आखिर तक मोहब्बत रखता रहा। जब वो बाहर चला गया तो यीशु ने कहा, अब इब्ने आदम ने जलाल पाया और खुदा ने उसमें जलाल पाया और खुदा भी उसे अपने जलाल में देगा, बल्कि उसे फिलफौर जलाल देगा। ऐ बच्चों, मैं और थोड़ी देर तुम्हारे साथ हूँ, तुम मुझे ढूंढोगे और जैसा मैंने यहूदियों से कहा कि जहाँ मैं जाता हूँ तुम नहीं आ सकते, वैसा ही अब तुमसे भी कहता हूँ। मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो, कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। अगर आपस में मोहब्बत रखोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। योहन्ना, तोमा ने उससे कहा, ऐ खुदावंद, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जाता है, फिर राह किस तरह जाने। यीशु ने उससे कहा कि राह और हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता। अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे, और मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे, यानि रूह हक, जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती क्योंकि ना उसे देखती है ना जानती है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर होगा। जबूर, जो हक ताला के पर्दे में रहता है वो कादर मुतलिक के साया में सुकूनत करेगा। मैं खुदावंद के बारे में कहूँगा, वही मेरी पनाह और मेरा गढ़ है, वो मेरा खुदा है जिस पर मेरा तवक्कल है, क्योंकि वो तुझे सयाद के फंदे से और मोहलक वबा से छुड़ाएगा, वो तुझे अपने परों से छुपा लेगा और तुझे उसके बाजुओं के नीचे पनाह मिलेगी। उसकी सच्चाई ढाल और सिपर है, तू ना रात की हैबत से डरेगा और ना दिन को उड़ने वाले तीर से, ना उस वबा से जो अंधेरे में चलती है, ना उस हलाकत से जो दोपहर को वीरान करती है। तेरे आसपास 1,000 गिर जाएंगे और तेरे दहने हाथ की तरफ 10,000, लेकिन वो तेरे नज़दीक ना आएगी। लेकिन तू अपनी आँखों से निगाह करेगा और शरीरों के अंजाम को देखेगा। पर तू ऐ खुदावंद मेरी पनाह है, तूने हक ताला को अपना मस्कन बना लिया है। तुझ पर कोई आफत ना आएगी और कोई वबा तेरे खैमा के नज़दीक ना पहुँचेगी, क्योंकि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि तेरी सब राहों में तेरी हिफाजत करें। वो तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे ताकि ऐसा ना हो कि तेरे पाँव को पत्थर से ठेस लगे। चूंकि उसने मुझसे दिल लगाया है, इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा, मैं उसे सरफराज करूंगा, क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना है। वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे जवाब दूंगा, मैं मुसीबत में उसके साथ रहूंगा, मैं उसे छुड़ाऊंगा और इज्जत बख्शूंगा, मैं उसे उम्र की दराजी से आसूदा करूंगा और अपनी निजात उसे दिखाऊंगा। अब मैं मेरी बेकर एडी की तहरीर करदा क्रिश्चियन साइंस की दरसी किताब साइंस और सेहत आयात की कुंजी के साथ में से ली गई तहरीरें पढ़ूंगा। साइंस और सेहत। यीशु ने मसीह की शिफा की रूहानी बुनियाद पर अपना चर्च कायम किया और अपने मिशन को बरकरार रखा। उसने अपने पैरोकारों को सिखाया कि उसका मजहब इलाही असूल था, जो खता को खारिज करता और बीमार और गुनाहगार दोनों को शिफा देता था। उसने खुदा से जुदा किसी दानिश, अमल और ना ही जिंदगी का दावा किया। बावजूद उस एजा के जो इसी के बायस उस पर आई, उसने इलाही कुव्वत को इंसान को बदनी और रूहानी दोनों लिहाज से निजात देने के लिए इस्तेमाल किया। हमारे मालिक ने बीमार को शिफा दी, मसीही शिफा की मशक की और अपने तालब इल्मों को इसके इलाही असूल की अमूमियात सिखाई। मगर उसने शिफा के इस असूल को जाहिर करने और बीमारी से महफूज रहने के लिए कोई हतमी असूल वजा नहीं किया। क्रिश्चियन साइंस में ये असूल दरियाफ्त करने के लिए रखा गया है। सन 1866 में मैंने क्रिश्चियन साइंस या जिंदगी, सच्चाई और मोहब्बत के इलाही कवानीन को दरियाफ्त किया और अपनी इस दरियाफ्त को क्रिश्चियन साइंस का नाम दिया। खुदा नहायत शानदार अंदाज से مجھے سائنسی ذہنی شفا کے متعلق الہی اصول کے اس آخری مکاشفہ کے استقبالیہ کے لیے تیار کر رہا تھا۔ میری 3 سالہ دریافت کے بعد میں نے عقلی شفا سے متعلق مسئلے کا حل تلاش کیا، آیات کو تلاش کیا اور تھوڑا بہت کچھ اور مطالعہ کیا، معاشرے سے دوری اختیار کی اور ایک مثبت اصول کی دریافت کے لیے اپنا وقت اور توانائی وقف کی۔ یہ تلاش شیریں، پرسکون، امید کے ساتھ خوشکن تھی، نہ کہ خود غرض اور نہ ہی افسردہ تھی۔ میں خدا کو بطور عقل کے ہم آہنگ عمل کے اصول جانتا تھا، اور یہ کہ ابتدائی مسیحی شفا میں علاج پاک، بلند ایمان کے وسیلہ پیدا ہو رہے تھے، مگر مجھے اس شفا کی سائنس لازمی جاننا تھی، اور میں الہی مکاشفہ، وجہ اور اظہار کی بدولت اپنی راہ کی قطعی منازل پر پہنچا۔ میرے ادراک میں سچائی کا انکشاف آہستہ آہستہ اور بظاہر الہی طاقت کے ذریعے آیا۔ سائنس کی اصطلاح مناسب طور پر سمجھی جائے تو خدا کی شریعت اور کائنات بشمول انسان پر اس حکمرانی کا حوالہ دیتی ہے۔ اس سے یہ بات سامنے آتی ہے، تاجران اور مذہبی علماء نے دیکھا ہے کہ کرسچن سائنس ان کی برداشت اور ذہنی قوتوں کو فروغ دیتی ہے، کردار کے لیے ان کی سوچ کو وسیع کرتی ہے، انہیں فراست اور ادراک اور اپنی عام گنجائش کو بڑھانے کی قابلیت دیتی ہے۔ انسانی سوچ روحانی سمجھ سے بھرپور ہو کر مزید لچکدار ہو جاتی ہے تو یہ بہت برداشت اور کسی حد تک خود سے فرار کے قابل ہو جاتی ہے اور کم آرام طلب ہوتی ہے۔ ہستی کی سائنس کا علم انسان کی قابلیت کے فن اور امکانات کو فروغ دیتا ہے، فانی لوگوں کو بلند اور وسیع ریاست تک رسائی دیتے ہوئے یہ سوچ کے ماحول کو بڑھاتا ہے، یہ سوچنے والے کو اس کے ادراک اور بصیرت کی مقامی ہوا میں پروان چڑھاتا ہے۔ وہ دعا جو گنہگار کو ٹھیک کرتی اور بیمار کو تندرست کرتی ہے، وہ مکمل طور پر یہ ایمان ہے کہ خدا کے لیے سب کچھ ممکن ہے، جو اس سے متعلق ایک روحانی فہم، ایک بے لوس محبت ہے۔ کرسچن سائنس گناہگار کو بیدار کرتی ہے، کافر کو سدھارتی ہے اور بے بس معذور کو درد کے بستر سے اٹھاتی ہے۔ یہ بہرے کو سچائی کی باتیں سناتی ہے اور وہ خوشی سے جواب دیتے ہیں۔ یہ بہرے کے سننے، لنگڑے کے چلنے اور اندھے کے دیکھنے کا سبب بنتی ہے۔ کرسچن سائنس حق کی شریعت ہے جو واحد عقل یا خدا کی بنیاد پر بیمار کو شفا دیتی ہے۔ یہ کسی اور طریقے سے شفا نہیں دے سکتی، کیونکہ انسان نام نہاد فانی عقل مشفی نہیں ہے، بلکہ بیماری پر ایمان کی وجہ بنتا ہے۔ چونکہ مصنفہ نے بیماری اور اس کے ساتھ ساتھ گناہ کے علاج میں سچائی کی طاقت کو دریافت کیا، اس کا نظام مکمل طور پر تصدیق شدہ تھا اور یہ کبھی نامکمل نہیں رہا، بلکہ کرسچن سائنس کی بلندی تک پہنچنے کے لیے انسان کو اس کے الہی اصول کی فرما بردار زندگی گزارنی چاہیے۔ مصنفہ کی مقدس دریافت کے بعد اس نے سائنس کا نام مسیحت کے ساتھ منسلک کیا، جسمانی فہم کے لیے غلطی کا نام اور عقل کو مادہ کا نام دیا۔ سائنس نے اس مسئلے اور اس کے اظہار سے مقابلہ کرنے کے لیے دنیا کو دعوت دی جو بیماروں کو ٹھیک کرتی ہے، غلطیوں کو ختم کرتی ہے اور ہم آہنگی کو ظاہر کرتی ہے۔ ان فطری کرسچن سائنسدانوں، پرانے نیک لوگوں اور یسوع مسیح کے ذریعے خدا نے کرسچن سائنس کی روح کو ضرور ظاہر کیا۔ کیونکہ عقل کی سائنس عام سائنسی اسکولوں کو اچھی نہیں لگتی جو صرف جسمانی چیزوں کے ساتھ لڑائی کرتی ہے، اس لیے اس سائنس کی مخالفت کی گئی۔ لیکن اگر کوئی علم خدا کو عزت بخشتا ہے تو دانشمند لوگوں کی طرف سے اسے تسلیم کیا جانا چاہیے، نہ کہ اس کی مخالفت ہونی چاہیے۔ اور کرسچن سائنس خدا کی عزت ایسے کرتی ہے جیسے کوئی دوسرا عقیدہ نہیں کرتا، اور وہ یہ سب اس کے مقرر کردہ طریقوں سے کرتی ہے۔ اس کے پاک نام اور فطرت کے ذریعے بہت سے حیرت انگیز کام انجام دیتے ہوئے کرتی ہے۔ کسی شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے مقصد کو بغیر ڈر یا ضد کے پورا کرے۔ کسی کام کو بہتر انجام دینے کے لیے اس کام کو خود غرضی سے پاک ہونا چاہیے۔ मसीहत कभी भी इलाही असूल पर बुनियाद नहीं रखेगी और यूं यकीनी रहेगी जब तक कि उसकी मुकम्मल साइंस तक रसाई नहीं होगी। जब यह मुकम्मल हो जाए, ना तकब्बुर, तासुब और ना ही हसद इसकी बुनियाद को तल्फ कर सकेगी, क्योंकि यह मजबूत चट्टान मसीह पर रखी गई है। सच्चाई का लाफानी नज़रिया अपने परों तले बीमारों और गुनाहगारों को यकजा करते हुए सदियों का अहाता कर रहा है। मेरी खस्ता हाल उम्मीद उस खुशी के दिन का एहसास दिलाने की कोशिश करती है जब इंसान मसीह की साइंस को समझेगा और अपने पड़ोसी से अपनी मानद मोहब्बत रखेगा, जब वो ये जानेगा कि खुदा कादर मुतलिक है और जो कुछ उसने इंसान के लिए किया है और कर रहा है उसमें इलाही मोहब्बत की शिफाइया ताकत को जानेगा। वादे पूरे किए जाएंगे, इलाही शिफा के दोबारा जाहिर होने का वक्त हमा वक्त होता है और जो कोई भी अपना ज़मीनी सब कुछ इलाही साइंस की अल्तार पर रखता है वो अब मसीह के प्याले में से पीता है और वो रूह और मसीही शिफा की ताकत से मलबूस होता है। मुकद्दस यूहन्ना के अल्फाज में, वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अबद तक तुम्हारे साथ रहे। मैं इलाही साइंस को ये मददगार समझता हूँ। अब मैं मेरी बेकर एडी की जानब से चर्च मैनुअल में दिए गए रोजाना के 3 फ़राइज़ पढ़ूंगा। रोज़मर्रा की दुआ। इस चर्च के हर रुकन का ये फ़र्ज है कि हर रोज़ ये दुआ करे, तेरी बादशाही आए, इलाही हक, ज़िंदगी और मोहब्बत की सल्तनत मुझ में कायम हो और सब गुनाह मुझसे खारिज हो जाएं, और तेरा कलाम सब इंसानों की मोहब्बत को वाफिर करे और उन पर हुकूमत करे। मकासद और अमाल का एक असूल। ना कोई मुखालफत, ना ही कोई महज ज़ाती वाबस्तगी मादरी चर्च के किसी रुकन के मकासद या अमाल पर असरानंदाज होने चाहिए। साइंस में सिर्फ इलाही मोहब्बत हुकूमत करती है और एक मसीही साइंसदान गुनाह को रद्द करने से हकीकी भाईचारे, खैरात पसंदी और मुआफ़ी से मोहब्बत की शीरी आसाइशों की अकासी करता है। इस चर्च के तमाम अराकीन को सब गुनाहों से, गलत किस्म की पेशनगोइयों, मुनसफियों, मजम्मतों, इसलाहों, गलत तासरात को लेने और गलत मुतासर होने से आज़ाद रहने के लिए रोज़ाना ख्याल रखना चाहिए और दुआ करनी चाहिए। फ़र्ज़ के लिए चौकसी। इस चर्च के हर रुकन का ये फ़र्ज़ है कि वो हर रोज़ जारहाना जहनी आरा के ख़िलाफ़ खुद को तैयार रखे और खुदा और अपने कायद और इंसानों के लिए अपने फ़राइज़ को ना कभी भूले और ना कभी नज़रअंदाज करे। उसके कामों के बायस उसका इंसाफ होगा, वो बेकसूर या कसूरवार होगा।